आज नरोत्तम दास ठाकुर की आविर्भाव तिथि है। आज पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद 24 साल के बाद संन्यास लिए, 2500 साल में संन्यास लेके महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी गए। फिर 2 साल दक्षिण भारत तीर्थ भ्रमण किए, फिर उसके बाद 2 साल वृंदावन जाने चाहते थे, लेकिन स्वरूप दामोदर और रामानंद राय दोनों रुका के रखते थे, आज नहीं काल रथ यात्रा के बाद जाना है, कार्तिक में जाना है, कार्तिक आने से बोलता अभी शीत है, होली के बाद जाना, होली के बाद गर्मी है। तो दो साल महाप्रभु पुरी में रहे। पांचवा साल संन्यास लेने के बाद पांचवा साल 1510 में महाप्रभु संन्यास लिए हैं। पांचवा साल महाप्रभु जी ने बहुत विनय किया रामानंद राय सर्वंश ने कि इस बार मैं वृंदावन जाऊंगा ही जाऊंगा, आप कृपा करके हम लोगों को आज्ञा दे दो मेरे को। तो वो लोग कैसे कैसे महाप्रभु ने पांचवा साल संन्यास लेने के बाद पांचवा साल बाद बंगाल होके महाप्रभु वृंदावन आने के लिए निकले। बंगाल गए, सारे भक्ति मिले, मिलने के बाद उन्होंने राम के लिए गए, रूप सनातन से मिला। इधर सनातन को सभी माना किए थे, प्रभु इतने लोगों के साथ आपके वृंदावन जाने का इतना ठीक नहीं है, तो इतने लोगों की रहने का व्यवस्था, खाने का, लोग देख के आपको क्या बोलेंगे कि एक ढंगी सन्यासी है, इतना लोगों को लेके जा रहा है, तो इसलिए वृंदावन की जो रस है ये आप आस्वादन नहीं कर सकते हैं, ये तो आप अकेला जाइए या साथ में एक व्यक्ति के ले जाइए। ये सही बात है कि इतना व्यवस्था करना, आपने जो भाव है आंतरिक भाव, उनके महाप्रभु के मन तो इधर उधर फंसा नहीं है, तो हमेशा कृष्ण लीला में, तो उस लीला को कहाँ पे कौन लीला आस्वादन करने के लिए तकलीफ है, इसलिए मना किए थे। फिर भी महाप्रभु राम के लिए रात में रुके थे, वहां से सुबह सुबह उठे और कानाई नठला तक गए। ये बंगाल बिहार में पड़ते है, अभी बिल्कुल गंगा किस पर बडार में है, कानाई नाथशाला। तो कानाई नाथशाला बोला ये कानाई कृष्णचंद्र इनकी नित्य करने का स्थान है, इसलिए महाप्रभु भाव विभोर हो गया, सारे भक्त लोग कीर्तन करने लगे। वो महाप्रभु भाव विभोर में बोलते हाँ राधे, हा ललिते, हा विशोके, हा मथुरा, इस प्रकार चिल्ला रहे थे। बोलते बोलते महाप्रभु के राधा भाव आ गया, मथुरा मथुरा बोल के चिल्ला रहे थे। और कितना भी नित्यानंद प्रभु प्रयास कर रहे, महाप्रभु को अपने स्वाभाविक चेतना में नहीं ला पा रहे थे, भाव विभोर बहुत ज्यादा अधिक भाव हो गया। तो नित्यानंद सारे भक्त लोग ने सोचा महाप्रभु की हल लेके हम लोग शायद महाप्रभु तो स्वाभाविक स्थिति आ ही नहीं रहे, हम लोग महाप्रभु हरा घुमा देंगे, महाप्रभु रहेंगे नहीं ऐसे होगा। तो तब तो क्या सोचे, और कीर्तन में बहुत जोर से कीर्तन में बताया नरोत्तम नरोत्तम ऐसे महाप्रभु चिल्लाए। तो सारे भक्त लोग ने सोचा नरोत्तम तो कोई इसमें है ही नहीं, तो कैसे महापुरुष इनके नाम बोल रहे, कोई महापुरुष आने वाले है ना क्या है पता नहीं है। तो फिर भी नित्यानंद प्रभु इतना प्रयास करने के बाद महापुरुष को पकड़ने जाते हैं, इतना लौटते फिरते हैं, जब कीर्तन करते इधर उधर ऐसे गिर पड़ते हैं, तो सोचा क्या करे। तो महापुरुष के कान में जब ऐसे मूर्छा में पड़े हुए थे, नित्यानंद ने बताया जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, तो महाप्रभु के नीलाचल के भाव आ गया, ब्रज भाव चले गए, नीलाचल के भाव आ गया। तो महाप्रभु ने उठा, इसके बाद पूछा कि प्रभु आप नरोत्तम नरोत्तम क्यों बोल रहे। उन्हें एक बात है, चलो अभी तो वहां से लौट के आना है। बोला अभी यार नहीं जाऊंगा वृंदावन, अभी जगन्नाथपुरी जाना है, तो पद्मा पार करके नहीं जाना, इधर से राम के लिए इधर से बीरभूम होके इधर से आ जाना है। लेकिन महाप्रभु ने गंगा पार करके गरेरहाट खेतरी जहां है गरेरहाट वहां पे गया। तो बोला प्रभु यहां क्यों आया। बोला महाप्रभु ने बोले नित्यानंद ये बहुत बहुत अच्छा स्थान है, लगता है जन्म स्थान है, और यहां मेरे को छोड़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं है, ये मेरा रहने के लिए दिल करता है कि मैं यही रहूं। तो बोला नित्यानंद ने बोला प्रभु आपने संन्यास लेके आप अपने जन्म स्थान नवद्वीप को छोड़ा, नीलाचल क्षेत्र को छोड़ के आप यही रहेंगे? बोला हाँ, क्योंकि जहां पे मन अच्छा लगता है यही रहना चाहिए। क्योंकि देखो 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 नित्यानंद, ये पद्मा नदी कितने सुंदर शोभा है और कितना अच्छा मन यहाँ पे लग रहा है, इतना जो जंगल आदि जो भी है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, सब कुछ यहाँ रहना है। तो जहां भक्त जन्म लेते हैं वो जगह भी बहुत पवित्र होते हैं। जैसे भगवान की जन्म स्थान है ऐसे शुद्ध भक्त की जन्म स्थान भी पवित्र है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते अपने गुरुजी के जन्म स्थान कुमारहट कभी गए थे, तो वहां से मिट्टी ले लिया, मिट्टी ले ले लेके अपने घर से लेके आए और उस जगह के नाम हुआ चैतन्य डोबा। अभी भी बहुत विशाल कुंड बन गया, जो भी जाते थे वही मिट्टी लेते थे। इसलिए भक्त का जो जन्म स्थान है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पवित्र है। तो बोला यही बहुत अच्छा स्थान है। और वहां के बहुत प्रेमी महाप्रभु कीर्तन के सारे भक्त के साथ, तो महाप्रभु ने बताया नित्यानंद एक बात बताऊं, आप नीलाचल जाते समय जैसे आप रोए थे ना, तो आपकी जो आंखों की धारा है प्रेम है, तो मैं इसको इकट्ठा करके रखा हूं, बन के इकट्ठा करके रखा हूं, इस प्रेम की जन्म कराना चाहता हूं। क्योंकि आप नित्यानंद महाप्रभु नित्यानंद को बोल रहा है, क्योंकि अपना नहीं बोलना है, नित्यानंद को बोल रहा है आप जितना दिन तक पृथ्वी में रहोगे तब तक प्रेम रहेगा, आप चले जाने के बाद प्रेम नहीं रहेगा। मेरा इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि मैं प्रेम और कुछ दिन रखूं ये धराधाम में, इसलिए प्रेम जन्म कराना चाहता हूं। इसलिए उसका नाम नरोत्तम होगा। तो प्रभु नित्यानंद ने पूछा, प्रभु आप प्रेम किसको दोगे, तो है नहीं प्रेम, अभी रखोगे कहां? और पृथ्वी में कोई प्रेम को धारण करना बहुत मुश्किल है। जगन्नाथपुरी में एक बार श्रीनिवास के लिए प्रेम रखा था तो इतना हिल रहा था जगन्नाथपुरी, वो पुजारी पांडा लोग आके जो पूजा सेवा करते वो लोग कंप्लेन किया कि हम लोग सेवा नहीं कर पाए महाप्रभु, क्योंकि हम हाथ यहां इतना हिलते हैं प्रेम के कारण, धरती इतना ये हिलती रहती है प्रेम के भाव से, तो सेवा नहीं करते। जगन्नाथपुरी पंडित लोग जब बोला महाप्रभु से, तो महाप्रभु ने बताया प्रेम को थोड़ा शांत, पृथ्वी माता को बोला थोड़ा शांत रहो। इसी प्रकार प्रेम ऐसे तैसे कहीं पर रखना बहुत मुश्किल है। तो महाप्रभु ने सारे भक्तों के साथ जब पद्मा नदी में प्रवेश किया, तो पद्मा में प्रवेश करती है प्रेम के कारण पद्मा में इतना बाढ़ आ गया, इतना बाढ़ है बिना बारिश में पूरा गांव आसपास के जो गांव है सारे डूबने लगा, बाढ़ आ गया पूरा, और पद्मा में जो धारा है वो रुक गया, जो आगे चलने वाले सारे पानी जो ऊपर से आ रहा है बासी इकट्ठा होके पूरा गांव आदि सब डूब रहे। तो बोला नित्यानंद ने बताया, प्रभु आप ये बारिश नहीं है, लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो बाद में पद्मा जी को प्रेम दे दिए, बोला आप इसको रखना है प्रेम। और नरोत्तम नाम की कोई व्यक्ति जन्म लेने वाले हैं एक भक्त, उनका प्रेम देना है, आप शांत होकर रहना है अभी इस प्रेम लेके। तो पद्मा जी ने पूछे कि कैसे मैं पहचानूंगा वो नरोत्तम है? तो बोले जो व्यक्ति आप में स्नान करने से प्रवेश करने के बाद पद्मा नदी, क्योंकि ये जो नदी है एक स्त्री स्वरूपा है, इनके अपने अपने पूरा देवलोक में या भगवान के धाम में अपना अपना फम है, जैसे एक देवी रूप में। तो बाद में बोले तब आप जब कोई आपके इस जल में जब प्रवेश करेंगे तो जब आपको ऐसे भाव आ जाएगा अभी जैसे है, तो वो समझ जाना यही नरोत्तम है। तब महाप्रभु से कीर्तन आदि करके प्रेम दे के चले आए। अभी भी वो जगह है, ये तमाल वृक्ष है, हम लोग पिछले साल दर्शन के लिए गए थे, तो वो प्रेम तली अभी बोलते हैं वहां पे जगह, वो जगह के नाम ही प्रेम तल है कि जहां महापुरुष बैठे थे, जहां पे प्रेम दिए, जहां पे कीर्तन आदि किए थे। तमाल वृक्ष है, एक भक्त है जो जयपत महाराज से दीक्षित है, ब्राह्मण परिवार, उन पूजा करते हैं, राधा कृष्ण मंदिर आदि है, और एक तमाल वृक्ष है, प्रेम तली अभी भी है, एकदम निकट में पद्मा जी है। तो महापुरुष से धीरे धीरे नीलाचल आ गए, और इसके बाद जो कृष्णचंद्र दत्त हैं, उन्होंने पुत्र के लिए शालग्राम में जल तुलसी देते थे पुत्र प्राप्त के लिए, उनके कोई दूसरे पुत्र नहीं थे। तो ऐसे पूजा करते करते उनके बाद में कुछ ही दिन बाद में नारायणी जी की गर्भ संचार हुआ, और ये नारायणी जी एक सपने देखे कि एक पुरुष रतन कृष्णानंद उनकी दत्त से उनके हृदय से नारायणी के हृदय में प्रवेश किए, और ज्योतिष आदि लाए तो उन्होंने बताया बहुत महान पुरुष जन्म लेने वाले हैं, इनके जन्म लेने से ये देश में कोई दुर्भिक्ष कोई सूखा आदि नहीं पड़ेंगे, बहुत ही सर्व सुमंगल हो जाएगा। इसी प्रकार शुभ समय में ये जो आज माघ पूर्णिमा की तिथि, साल तो इतना निर्णित नहीं है, इस शुभ तिथि में नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म हुए। तो बहुत विशाल जमींदार थे, राजा जैसे मानते थे। तो वो लोग ने बहुत अच्छा से पंडित आदि लाके वेदोध्वनि कराया, वेदो मंत्र उच्चारण कराए, और जो वाद्य यंत्र बजाए, बहुत दिन तक ऐसे चलते रहा, उनका नामकरण हुआ। बचपन में जब उनके पहले बंगाल में होते, पता नहीं इधर कैसे होते, अन्न पहले जो चावल आदि खीर आदि देते हैं, पहले जो चावल अन्न प्रसाद देते हैं, उसके एक फेस्टिवल बनाते हैं। फेस्टिवल के दिन बहुत विशाल उत्सव बनाए, बहुत पंडित आए, बहुत वेदोध्वनि, बहुत मंत्र शस्ति वाचन आदि करके पूरा तैयार किया, खीर लाके दिया मुंह में, मुंह घुमा लिया, फिर देता है मुंह घुमा लेता है, फिर कितना भी प्रयास करे नहीं खा रहा है। सार इतना बड़ी आनंद उत्सव, राजा है आनंद उत्सव, पूरा दुख में परिणित हो गया, दुखी दुख है, बच्चे खा ही नहीं रहे कुछ। तब कोई ने बताया, कोई पंडित ने बताया, अच्छा उसको विष्णु प्रसाद दे दो, नारायण के प्रसाद। तब जब ठाकुर जी का प्रसाद लेके दिए, प्रांत खा गया, प्रसाद खाए तो बहुत खुश हो गया, सब जानते हैं। तब उनके पिताजी है, उन्होंने बता दिया कि इनको विष्णु प्रसाद के अलावा कभी दूसरा कुछ नहीं खिलाना, पूरा कड़क आदेश दे दिया। तब ऐसे रहे, और 5 साल हो गया, उनको कर्णभेद करके पढ़ने लिखने के लिए दिए, तो बहुत कम समय में पढ़ा लिखा किया। तो 12 साल हो गया, तो बचपन में आप जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर भी की शादी 12 साल में हो गए थे, तो माता पिता ने सोचे अभी इनकी शादी दे देना है। ऐसे होते थे शादी बहुत, 12 साल होंगे तो 5 साल की कन्या से शादी देंगे, वो अपने कन्या अपने पिता के घर रहेंगे, वो अपने घर में रहेंगे, जब समय होगा तब उनको ये करके फेस्टिवल करके जो लेके आते हैं। तो ऐसे ही शादी देने के रहते हैं, माता पिता दोनों सोचने लगे कि अभी तो नरोत्तम दास तो विरक्ति थे ही पहले से, सोचने लगे ऐसे होगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो एक दिन नित्यानंद को सपने में सोए चिंतित थे, सोया हुआ था नित्यानंद पुर आके छाती में हाथ दिया, बोला अभी आपका समय हो गया, शादी होगा फांसोगे आप, अभी घर से निकलो, आपके लिए महापुरुष जी ने पद्मा में प्रेम रखा है, तो घाट के नाम बता दिया, यहां पे जाके आप स्नान करो, आपका प्रेम मिलेगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अकेला अकेला चला गया। जाने के बाद जल में प्रवेश करते ही पूरा उसमें भाव आ गया पद्मा जी में, तुरंत वो अपने प्रकट होके नरोत्तम दास ठाकुर से बताया कि आपके लिए प्रभु ने प्रेम रखा है, आप प्रेम ले लीजिए। उन्होंने बताया प्रेम लेकर क्या करूं, तो बोला हाँ करके प्रेम लिया, प्रेम लेकर मैं क्या करूं, अब बता दिया पद्मा जी में बता दिया कि आप इसको पियोगे तो आप स्थिर नहीं रह सकते हो। तो जब उन्होंने प्रेम हाथ में लिए, लेकिन अभी सोचे क्या करना है, तो बहुत प्यास लग गया, बहुत गला एकदम सूख गया, तो तुरंत पी लिया। पीले के साथ पहले उनका वर्ण जो श्याम वर्ण था, पीने के साथ साथ उनका वर्ण पूरा घोर वर्ण हो गया और तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े। और अष्टसात्विक विकास, सुमांस, कंपो, रोना, हंसना, ऐसे जैसे भूत प्रवेश हो गया, महाभूत। अभी तो कोई स्थिर नहीं है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी कीर्तन करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, कभी मूर्छित होकर गिर पड़ते, ऐसे हैं। तो माता पिता देखे सुबह नर्तम है नहीं, तो कहा गया सारे लोग, तुरंत खबर फैल गया और बहुत सिक्योरिटी वगैरह बहुत तो लोग होंगे, सब लोग ढूंढने लगा इधर उधर। तो उनका माता जी पिताजी सब मिलके, कोई बोला हुआ कि नर्तन इधर गए होंगे सुबह सुबह पद्मा की ओर, तो गए जाके देखा, जाके अभी पहचान नहीं पाते हैं, सब जब जाके मिले हैं वो पड़ा हुआ है उधर प्रेम भाव में। तो सारे लोग ढूंढ रहे मिल ही नहीं रहे, तो कहां नरोत्तम है, कहां पूरा उनका जो वर्ण है सोने के जैसे बन गया, श्याम वर्ण थे, तो पहचान ही नहीं पा रहे। तू इतना रोना धोना कर रहे, तो बाद में नरोत्तम दर्शन, वही मैं नरोत्तम हूं। तो बाद में उनको उठा के लेके आए, और माता पिता तो एक ही लोता बेटा है, इतना धन संपद, इतना प्रेम है, लेकिन क्या करे, उन्हें अभी स्थिर नहीं है, कभी रोता है, कभी खाते हैं, कभी पीते हैं। तो इसी प्रकार हमेशा अष्टसात्य विकार में कभी चिल्लाते हैं गौरांगो हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसे हमेशा भाव में है। तो ये लोग बहुत चिंतित हो गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया कि मेरा भूख लगा, अभी मैं प्रसाद लेता हूं, इसके बाद में बताऊंगा क्या हुआ। तो उसके बाद उन्होंने लेटे हैं, प्रसाद पाने के बाद लेटे हुए हैं, और दोनों माता पिता पास में बैठे थे, फिर बीच बीच में चिल्लाते हैं। तो बताया कि मैं जब पद्मा स्नान करने के लिए गया था, तो ये गौर वर्ण शिशु मेरे अंदर प्रवेश हो गया, तब से मेरा ऐसे भाव हो गया। तो आसपास की जो खबर फैल गया, पागल हो गया कि भूत लग गया, और उनकी उनकी जो माँ है बता रही, वो अकेला अकेला गया कि भूत प्रवेश हो गया होगा, भूत लग गया, पागल जैसे हो गया। प्रेम कौन जानता है प्रेम के बारे में, अभी भी कोई प्रेमी पुरुष आएंगे तो उसके तो पागल ही लग बोलेगा। रामदास था, रामदास को भी यह खड़े, रामदास नित्यानंद के पार्षद थे, कभी खड़े रोड में खड़े होते तो दस घंटा तेरे भंग रूप में खड़े हो जाएंगे, एक अंग में पूरा जो रोंगटे पूरा खड़े हो जाएंगे, एक पूरा शीतल हो जाएंगे शरीर, ऐसे इन लोगों भाव पागल जैसे। तो इनको ये सोचा कि भूत लग गया है, तो गुणीन जो झाड़ने वाले हैं, भूत छुराने वाले, इन लोगों को बुला के वो देख के बताया, ये कोई भूत नहीं है, साधारण भूत नहीं, देवता प्रवेश हो गया इनके अंदर, देवता का प्रवेश हो गया। तो क्या करना है, वो जो गीदर है उनको मारकर उससे सिर से जो ये है ब्रेन है उससे घी जैसे बनाना है, उनको लगाना है शरीर में, तब ठीक हो जाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बताया कि मेरे लिए कोई जीव हत्या करना है तो ये हमारा जो बीमार है ये कम नहीं होगा और ज्यादा होगा। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर रहे, थोड़ा भाव थोड़ा शिथिल होगा और थोड़ा संभाल के रहे। इसी प्रकार थोड़ा अच्छा हो गया, तो एक बार कोई मुस्लिम सरकार, तब थे बंगाल की जो सरकार है, वो उनका कोई लोग आ गया, उनको थोड़ा देखने चाहते हैं, कुछ बातचीत करना था उनको। माता जी फिर भी भेज नहीं रहे थे, फिर बहुत समझाने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर भी समझाया कि मैं आ जाऊंगा, और माता जी बता दिया आने के बाद बेटा तेरे को शादी दे दूंगा। ठीक है बोला, ठीक है। इसी बाद उनको ले गया, बहुत चौकीदार सिक्योरिटी के साथ भेज दिए, गए तो वहां से रात को नरोत्तम दास ने उठे और भागा अकेला अकेला चले। राजकुमार है, कभी उन्होंने चला नहीं बिना इसमें, और बैसाख महीना चैत या बैसाख महीना था, गर्मी पूरा गर्मी में अकेला अकेला चलते रहे। खबर इधर सुबह सुबह खबर आ गया आप पिता माता के पास, तो नरोत्तम चले गए, भाग गए। तो सौ लोगों को भेज दिए चारों ओर, कहाँ गए उनको बुला के लाओ, कैसे बहुत पैसा मैं उनको इनाम दूंगा, बहुत पैसा जो उनको वापस लेके आएगा। तो नरोत्तम दास तो भागते रहा, उनका तो मन ही वृंदावन में आना है। तो उन्हें भागते भागते बहुत दिन चलो, दो चार दिन चलने के बाद, दो तीन दिन बाद एक बार कुछ खाने खाते थे तो उनका पैर में बहुत छाला पड़ गया। गर्मी भी है, चलने का आदत भी नहीं है, ऐसे रोड तो रोड भी ऐसे होंगे। तो उन्होंने बहुत थकामंद एक वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं, बहुत नींद आ गया। तो महाप्रभु जी स्वयं इनके कष्ट को देखकर, और उन्होंने बहुत दुखी हो गया, शायद ऐसी स्थिति होगा चल नहीं पा रहा था बिल्कुल, बहुत दुखी हो गया, शायद मेरा वृंदावन जाना होगा नहीं, ऐसी मेरा पैरों की स्थिति होगा तो मैं कैसे चल के जाऊंगा वृंदावन, और वृंदावन जाना बिना मेरा क्या है। तो उसे बहुत दुखी होकर जब सो गए, महापुरुष स्वयं एक लोटा दूध लेके आ गया, बोला नरोत्तम उठो इस दूध पी लो। तो फिर भी नरोत्तम इतना थका मंदा था उठा ही नहीं, महापुरुष दूध छोड़ के चले गए। फिर रूप सनातन दोनों भाई सपने में आए, आके बोला उठो नरोत्तम उठो, आपके लिए महापुरुष दूध देके गए हैं। तो इतना सुनने के बाद उनको थोड़ा धक्का दिए, सोए हुए थे। आप जानते हैं परिश्रम होने के बाद, ऐसे चलने के बाद, परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद बहुत अच्छे नींद होते हैं, उठने का बिल्कुल दिल नहीं होता है। तो और ज्यादा चले हैं, दो तीन दिन हो गया। इसके बाद फिर भी बहुत ये किया तो उठे, उठने के बाद दोनों गोस्वामी का दर्शन नहीं हुआ, बहुत फिर विलाप करने लगा, रोने लगे। रोने लगे बाद दोनों गोस्वामी फिर दर्शन दिए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी प्रकार रूप से नरोत्तम दास को दर्शन हुआ। तो दर्शन नहीं है तो बताया, सारी बात बताया कि इस दूध पी लो, आपका जो शरीर के जो दर्द है, पैर के जो छाला पड़ गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे आप वृंदावन चले जाओगे। तो इसने ये करने के बाद थोड़ा देर बाद में दोनों अदृश्य हो गए। फिर बहुत विरह हुआ, बहुत रोया, फिर दूध पिए, शरीर पूरा ठीक हो गया, धीरे धीरे वृंदावन की ओर चले। और आते आते गोरदेश की और एक दो आदमी मिल गया, दो चार भक्त आ रहे थे मिल रहे थे, लेकिन ये आते समय केवल रो रहा था। तो बोलते रो क्यों रहे, चलो वृंदावन जाना है तो। लेकिन इनके भाव कौन समझते हैं, ये तो प्रेम प्रेमिक भाव में हमेशा, अष्टसात्विक भाव में हमेशा रोते थे। तो ऐसे कैसे करते जो आए काशी, काशी आकर चंद्रशेखर तपन मिश्र नहीं थे, उनके जो श्रीपाठ है सनातन कहाँ पे थे, महाप्रभु कहाँ रुकते थे, ये सब दर्शन करके एक वैष्णव उनको सेवा, कोई सेवा भी करते थे, कोई वैष्णव उनको आदर आदि किए। फिर ऐसे धीरे धीरे वृंदावन आ गया, वृंदावन विश्राम तीर्थ में स्नान किए। स्नान करने के बाद पहले ही सुना था कि महाप्रभु अपने धाम चले गए, रूप सनातन है। तो विश्राम तीर्थ में जब आए तो यहाँ पे भी खबर मिला कि रूप सनातन भी चला गया अपनी लीला में, नित्य लीला में। तो और ज्यादा दुखी तो कि वहां पड़ा हुआ है, वहां विश्राम तीर्थ में स्नान आदि करके वो गिर में बहुत दुखी होके वह गिरा पड़ा है। रूप सनातन जीव गोस्वामी को स्वप्न दिया, फिर बताया कि ये नरोत्तम आ गया है, उनके किसी आदमी से देकर भेज के लेके आओ, हम लोग अदर्शन होने से बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तो बुला के लाए और लोकनाथ गोस्वामी के पास उनको समर्पण करना है। तो उनको लेके आया, दर्शन किए, गोविंद जी आदि सब दर्शन किए, जीव गोस्वामी सबसे मिले और बाद में लोकनाथ गोस्वामी से मिलाया। इनके बहुत ही ज्यादा एक विनम्र वैष्णव थे लोकनाथ गोस्वामी, उन्होंने कोई शिष्य शिकार करने का उनका बिलपतिक गई था, कोई शिष्य शिकार नहीं करना है, शिष्य शिकार करने से हमको पूजा करेगा, हमारा नाम जाके कोई गाते रहेगा, हमारा प्रशंसा होगा तो हमारा है बहुत महान, लेकिन अपने भाव में इतना विनम्र है, किसी से सेवा करेगा मेरा सेवा, मैं इतना नीचे गिरा हुआ, मेरा सेवा नहीं करना चाहिए किसी को, तो इसलिए उनका भाव ऐसे विनम्र था। लेकिन महापुरुष की भी आदेश है और उनकी भी शिष्य भी बहुत तगड़ा है, तब उन्हें कोई सेवा के लिए भी और उनको शिकार करने के लिए भी बिल्कुल राजी नहीं थे, तो कोई भी सेवा करता था बोलता है इसको मत करो। नरोत्तम दास ठाकुर ये देखते थे कि शायद ये सेवा करने के मैं योग्य नहीं हूं, ऐसे कि नहीं मेरे को नहीं पसंद कर मैं दूसरा गुरु ले लूंगा, ये हमको मैं आया हूं मैं इतना पढ़ा लिखा हूं बड़े घर का लड़का हूं, ऐसे नहीं। वो कोई भी फूल लाना है नहीं बोले इसको मत करो, छोड़ देते हैं। वो अपने में क्या सोचते हैं नरोत्तम कि मैं इसको करने का योग्य नहीं, जैसे गुरु है वैसे चेला है, सोचते कि मैं इसको करने के दूसरे झाड़ लगाना वो भी मना कर देते हैं, कोई भी करियर कोई भी सेवा करने के लिए मना कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ सेवा तो गुरु का करना ही है। तो उन्होंने जाके सोचा कि मैं अच्छे सेवा करने के योग्य नहीं हूं। जहां मॉल पैक करते थे शौच आदि करते थे वहां पे जाके अच्छे मिट्टी लाके उसको रेता वगैरह हटा के गिला करके रख देते थे, और जहां लेटरिन करते थे उसे पूरा झाड़ू से छपाई करके गोबर से पुताई करके रखते थे हर दिन। तो ऐसे एक साल लगभग ऐसे सेवा करते थे, अंधेरे अंधेरे में जाते थे, एक निश्चित लगभग जगह क्षेत्र एक होता था कि पहले तो इतना लोग नहीं थे इतना ये नहीं था, एक क्षेत्र आसपास जो भी वहां लैटिन करते थे उससे पहले नरोत्तम दास ठाकुर जाके छुपे रहते थे, छुपके एक वृक्ष के नीचे पीछे छुपे रहते थे, हर दिन ऐसे छुपे रहते थे, सफाई वफाई करने के बाद झाड़ू को अपने छाती में लगाते थे। इसके प्रकार सेवा करते करते लोकनाथ गोस्वामी को पता चला, उनको जब पता चला बोला अभी मैं क्या करूं किसको बताऊं, या कोई ब्रजवासी करेगा ऐसे सेवा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, कौन कर रहा है किसको मैं पूछूं किसको बताऊं, तो बहुत शर्म लग रहा है मेरे को, ऐसे कार्य कर रहा है मेरे जो है मल मूत्र आदि कोई साफ करके फेंक रहा है इस जगह को, दूसरी जगह फेंक रहा है गोबर से पूरा आने वाले जो तो पगडंडी थोड़ी सी रोड है वो सब साफ सुफ करके रखते हैं, कौन ऐसे है क्या करूं, ब्रजवासी हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। इसी प्रकार करते एक दिन उन्हें जाके शोध कार्य किया, थोड़ा आगे जाके छुप के रहा, तो नरोत्तम जो छुपे हुए थे उन्होंने निकला, तो बोला कौन है कौन है, बोला गुरु जी मैं अदम नरोत्तम हूं। अच्छा ऐसे करिए आप करते हो, और उन्होंने जानते नरोत्तम है इतना दुखी नहीं हो, ब्रजवासी यदि होता तो ज्यादा दुखी हो जाते, तो नरोत्तम है उस शिष्य, तो उनका मन पूरा पिघल गया, जानते भी है कि इतना बड़े घर की बेटा है, तो मन बहुत पिघल गया और बताया कि मैं गुरु जी कोई सेवा करने के लिए आप आदेश नहीं देते, मैं सोचता हूँ यही सेवा करने के लिए मैं योग्य हूँ। इसके बाद उन्हें खुश हो गए, और उसके बाद शौच आदि करने के बाद बोला ठीक है पानी डालो, उनको शिकार किया। इसके बाद एक साल हो गया, और एक साल में सिखाया क्या करना है क्या नहीं करना है। दीक्षा लेने के बाद शिष्य यदि अपराध करते हैं पाप करिए कर्म करते अपराध करते हैं वो गुरु को लगता है, इसलिए गुरु को चाहिए कि पूरा शिक्षा दे। 400 नियम सिखाया, 400 नियम सिखाया, पारंगत किया, उसके बाद ही दीक्षा दिया। इसलिए कोई शिष्य को शिकार करने से उसको पकाना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, क्या नाम अपराध क्या सेवा अपराध क्या वैष्णव अपराध क्या धाम अपराध है, क्या कौन क्या एकादशी को कैसे पालन करना है, क्या जन्माष्टमी को कैसे पालन करना है, ये सारे नियम के नहीं पालन करने से क्या होते हैं, ये सारे नियम को कैसे शौच में बैठना है, कैसे खाने प्रसाद में बैठने हैं, कैसे क्या करना है, कैसे वैष्णवों का आदर आदि करना है, सीनियर जूनियर सब कुछ को ठीक ठीक ठाक सब शिक्षा दे दिया। 400 नियम सिखाया कम से कम, पारंगत किए, तो उन्होंने बाद में खुश होकर जमुना से स्नान करके आए, उनको दीक्षा दिए, और उनका नाम पहले से ही नरोत्तम था, नरोत्तम नाम के चेंज नहीं हुआ, दीक्षा दिए राधा कृष्ण मंत्र में दीक्षा दिए। और पहले उन्होंने हरि नाम लेते थे, पहले शिक्षा देने से दीक्षा देने से पहले एक नाम हरि एक साल हरि नाम आश्रय लेके रहे, 2 लाख नाम करते थे, 2 लाख नाम करते थे और जब भी समय नहीं मिलता था रात सोने का टाइम मेहनत करके नाम जाप करते थे। उन्होंने दीक्षा दे दी है, बाद में उनको राधा कृष्ण की क्या सेवा करना है, मानसिक रूप से कैसे चिंतन, ये सब सारी कुछ बताया। तो उन्होंने एक दिन कुंज में उन्होंने नाम जप करते करते चंद्रा आ गए, राधा रानी आ गई। राधा रानी आके बताया कि आप अबे चंद्र चंपक लता की कुंज में, चंपक लता गोपी की कुंज में अभी कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण के मिलन है, कृष्ण आएंगे यहाँ पे दूध गर्म करने का आपको सेवा आप कर सकते हैं। और राधा ने स्वयं बताया कि अब चंपक मंजरी आपका नाम है, चंपक मंजरी है। तो उन्होंने ठीक है ऐसे गुरु जी से आके पूछा, ऐसे राधा रानी मैं ऐसे तंद्रा आ गया था, ऐसे ऐसे मेरे को राधा रानी का बताई है, बोले ठीक है ये सेवा आप करो। तो वही सेवा उसी कुंज में उसी समय उस भाव में, ये सब मानसिक सेवा है, मानसिक सेवा। बाहर शरीर में हनेश्वर नाम जप करते थे और मानस मनुष्य में सेवा करते थे। तो उसी में सेवा करते करते दूध गर्म करते करते दूध में बहुत उफान आ गया, उफान आ गया। और तो उतारने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने हाथ हाथ लगा दिया, पूरा आग जल रहे थे उसमें हाथ लगा दिया तो हाथ ये रखा तो हाथ उनका जल गया। मानसिक सेवा किया, शरीर जला इस शरीर की, ये शरीर हाथ जला इस शरीर की, हाथ जल गया, पूरा कपड़ा लपट के गुरुजी के पास आए और बहुत दुखी हुआ कि गुरुजी की सेवा भी नहीं कर सकते अभी। और कभी उनका समय मिलता है युग के समय के बाद जो रहने के बाद सेवा करते थे आते तो गुरुजी के पास हमेशा कुछ सेवा करते थे और दूर दूर खड़े रहते या उनके जो कुटिया उनको परिक्रमा करते थे नाम माला माला लेके। इसी प्रकार सेवा कैसे करेंगे गुरुजी का, तो कैसे कैसे लोकनाथ गोस्वामी को बता दिए और उनको पता चला कि इनका हाथ जल गया, बहुत खुश हो गया, आलिंगन किए, बहुत उनका आशीर्वाद दिए कि आपका जीवन आपका सेवा जो है आपका भाव है मनुष्य सेवा ये सार्थक है। तो ऐसे दक्षिण भारत की कथा, दक्षिण भारत ब्राह्मण की कथा भक्ति रसम सिंधु में भी है। रघुनाथ दास गोस्वामी के खीर भोग लगाया, उन्होंने भी खाए उनका पेट खराब हो गया था। नरोत्तम दास ठाकुर मानसिक सेवा में उनका हाथ जल गया। श्रीनिवास आचार्य अपने सेवा में तीन दिन तक समाधि में रहे, अपने ये नित्य स्वरूप में आ गए। तो ऐसे मानसिक सेवा ऐसे तन्मय ये लोग हो जाते हैं मानसिक सेवा चिंतन में कि बिल्कुल एक ही कार्य करते हैं, ये जड़ शरीर और सिद्ध शरीर। इसी बार कुछ दिन बाद वृंदावन में रहे तीनों का तीन बंधु थे, फ्रेंड थे, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम। जीव गोस्वामी के पास शिक्षा लेते थे, पढ़ाई गोस्वामी ग्रंथों को पढ़ाई करना और अलग अलग सेवा भी था। नरोत्तम दास गुरु सेवा करते थे, श्यामानंद झाड़ू लगाते थे सेवा कुंज में निधुवन में, और श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य ऐसी कुछ सेवा में जो भी लगाए थे। तो तीनों का इच्छा था कि हम लोग जीवन भर वृंदावन में रहूंगा, लेकिन उनका आदेश हो गया जीव गोस्वामी की जो गोस्वामी ग्रंथ है इसको लेकर, वो था संस्कृत में लेकिन लिपि जो है बंगाली लिपि था, इसको लेकर आप बंगाल में जाकर प्रचार करना है, रूहा पे आप लोग रहना है प्रचार करना है। तीनों को क्षेत्रों भी अलग अलग दे दिया, उड़ीसा में दे दिया श्यामानंद प्रभु को, पूर्व बंगाल की ओर नरोत्तम और इधर पश्चिम बंगाल की ओर श्रीनिवास आचार्य के प्रचार के लिए विवाह कर दिया। किताब एक दे दिया, सब भक्तों से मिले और लोकनाथ आदि गोस्वामी से जब बताया तो सोच रहे थे कि लोकनाथ गोस्वामी को एक सेवक भी चाहिए था, वृद्ध हो गए थे, तो ये महापुरुष की सेवा के लिए उन्होंने नहीं बताया, नहीं मेरे सेवक चिन्ह आप जी गोस्वामी जो बताया है और जो महापुरुष की सेवा है इसका करो जाके। तब उन्होंने रेडी हुए गए जाके जो वन विष्णुपुर में सब ग्रंथ चोरी हो गया, श्रीनिवास आचार्य उधर रुके और नरोत्तम जी आज जाके चले गए बंगाल और श्यामानंद प्रभु उत्कल चले गए। इसी प्रकार उन्होंने जाके दोबारा अपने जो गांव है खेतरी में जाके प्रचार करने लगे। इसके बाद बड़े उत्साह एक बार से विग्रह प्रतिष्ठा के लिए उनको सपने में मिला, तो से विग्रह प्रतिष्ठा के लिए तैयारी हुए, उस विग्रह बनाए। एक गौर पूर्णिमा को दिन प्रतिष्ठा करना है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के जो विग्रह है वो दारू विग्रह बनाना था। कोई कारपेंटर कितना भी प्रयास करे महाप्रभु का विग्रह बना ही नहीं पा रहा था ठीक से। तब समय भी आ गया, नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम दास जी बहुत चिंतित हो गया कि अभी समय आ गया, गौर पूर्णिमा आ गया, अभी विग्रह तैयार नहीं हो रहा है, कैसे प्रतिष्ठा होगा। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने सपने में आए बताया कि विप्रदास को, एक गांव है दूर थोड़ा उससे खेतरी से दूर है, विप्रदास के धान रखने वाले धान अनाज भंडार बहुत दूर भंडार अलग से होते हैं, उसमें कभी कभी मैं देखा तो नहीं सुना हूं कि कभी सर्प आदि हो जाते हैं, बहुत पुराना भंडार है ना उसमें सर्प हो जाते हैं। तो उसमें उनका विप्रदास की वो अनाज के बिजनेस करते थे, उनके पुराना एक छोटे से भंडार है उसमें गोडाउन है, उसमें हो गया सर्प बन गया, कोई भी जाते हैं पास में तो नहीं जा पाते, तो वो फुत्कार करते हैं सुस करके बहुत तेज से, तो कोई पास में जाता नहीं डर से, ऐसे ही बंद पड़ा है। तो बोला उसके जो है भंडार है गोडाउन है उसमें मैं रहता हूं। बंगाल में एक गोला बोलते हैं, इधर तो पता नहीं बम्बू से बनाते हैं, गोला बोलते हैं बम्बू से, ऐसे करके जैसे टोकरी है ना, ये छोटे छोटे बम्बू की टोकरी है ना, ऐसे बड़े वो तो सीधा ऐसे रहते हैं गोल, ऐसे ऐसे बोल देते बनाते हैं। एक्चुअली एज इट इज वो गोला बताया है उसने, बंगाली में गोला बोलते हैं, गोला बम्बू से बनाते हैं धान रखते हैं। तो उसमें है तो कोई नरोत्तम दास ठाकुर एड्रेस पता किया कहाँ पे गांव है क्या है, तो गए। जाने के बाद बोला मैं उसमें जाना है जिसमें बंद पड़ा है। बोला नहीं 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 कोई नहीं जा सकता उसमें, आप इतना महान ठाकुर जी है, आपको तो आप इतना प्रचारक है, इसे आपको काट देगा तो नुकसान हो जाएगा सारे लोगों का। बोला नहीं नहीं मेरे को उधर जाना है वो। तो जाते ही नरोत्तम दास ठाकुर जब मना करने के बाद देखे है भक्त है वैष्णव है, तब जाने दिए। जाने जाने के बाद जो भी इतना फुत्कार करते थे कुछ भी नहीं है, जाके चैतन्य महाप्रभु जी के विग्रह उसमें मिला। तो उस विग्रह को लाकर इस गौर पूर्णिमा के दिन प्रकट उनका जन्मोत्सव आदि सब मनाना है। तो बंगाल की जो भी वैष्णव थे, श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर रघुनंदन ठाकुर जानवामा और भी जो वैष्णव माने गुणे जितना भी वैष्णव थे, सारे वैष्णव लोग खेतरे में गए और विशाल उत्सव बनाया। सबको रहने के व्यवस्था बहुत सारे सब कुछ व्यवस्था बनाए इधर, और कीर्तन बहुत सारे कीर्तन बहुत सुंदर कीर्तन होते थे। जानवा माता जी पूरा जो कुकिंग व्यवस्था रसोई की व्यवस्था वो सब माता जी सब देखभाल कर रही थी। श्रीनिवास आचार्य ने विग्रह प्रतिष्ठा की जो कार्य है ये सब देख रहे थे। तो करते करते एक विग्रह प्रतिष्ठा हो गया, होने के बाद कीर्तन हुआ। कीर्तन में नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। कीर्तन में महासंकीर्तन शुरू हुआ, महासंकीर्तन महा महासंकीर्तन हुआ, पंचतत्व साक्षात प्रकाश हो गए। तो जब प्रकाश हुए कुछ समय रहे और जोर से जब कीर्तन हुआ फिर इसी प्रकार खेतरी महोत्सव हुआ और दिन दिन प्रचार करियो बढ़ाए। तो बहुत ध्यान से ठाकुर जी का सेवा करते थे, टाइम जो है पूरा ठीक से मेंटेन करते थे। मैं पहले बार क्लास में बताया जो कुकिंग करना है उसको कपड़े बांधकर कुकिंग करते थे, ये बहुत सावधानी रहना चाहिए। कोई भी भक्तों को जो भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भोग प्लेट बना रहे हैं, उसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, सामने थूक गिरता है, मशीन लगे सूक्ष्मदर्शी देखेंगे ना बहुत सारे गिर रहा है, इससे अपवित्र हो जाते हैं। अभी भी जगन्नाथपुरी में जानते ही है आप लोग अनंत वासुदेव है, हमेशा कपड़े बन के ही कुकिंग आदि करते हैं, भोग ले जाते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी की सेवा बहुत प्रेम से करते थे और उनका भजन निष्ठा भी बहुत था। जब नाम लेते थे उन्होंने कोई बात नहीं करते थे। और ये जो रामचंद्र कविराज है इनके भी बहुत मित्र थे, संगति थे, ये दोनों इधर रह के भजन करते थे। और बहुत सारे दुष्ट लोगों को धीरे धीरे उद्धार किया। गंगानारायण चक्रती है, ये भी बहुत बड़े शास्त्र पंडित थे, धीरे धीरे उनको। और रूप नारायण, एक राजा रूप नारायण है, एक दिग्विजय पंडित। इसी प्रकार उन्होंने बहुत लोगों को, एक बार क्या हुआ, जब ब्राह्मण लोगों को दीक्षा दिया तब ये हुआ कि ब्राह्मण ये कायस्थ है, ये ब्राह्मण लोगों को दीक्षा देते हैं कैसे, ये तो नरक में जाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो एक जो राजा था, नरसिंह करके एक राजा थे, उनका जो पंडित था वो मायावादी थे, वो लोग लेके आया उसको, लेके नरोत्तम को, क्या पंडित है, उसको शास्त्र युक्ति से हरा देंगे। ऐसे किया तो रामचंद्र कविराज, गंगानारायण चक्रवर्ती, ये भी ये लोग समझ गए। तो ये लोग ने जो गांव से वो लोग आ रहे थे जिस रोड से, वहां पे मटके की पान दुकान, मटके के ये सब बनाए, दुकान लेके बैठे, तो आए तो उसका जो उनका जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो लोग को भेजा था सब खरीदने के लिए। उनके साथ संस्कृत वार्ता हुआ, हरा दिया। तो लोग बाद में उनसे बातचीत हुआ, शास्त्र चर्चा हुई, तो हार गए। तो बोला ये हम लोग नरोत्तम ठाकुर के साधारण शिष्य है। तो लुहा से लोग भाग गया। तो देवी का आदेश भी हुआ, तो इसके बाद में उनके उन लोग भी आके दीक्षा लिए। तीसरी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर प्रचार कार्य करते थे। दो बड़े जगाई मदई जैसे दो थे, बड़ा बदमाश लोग, जैसे शराबी थे, स्त्री लोगों को अपहरण करते थे, मांस आदि खाते, ब्राह्मण थे दोनों। तो होकर ऐसे जगह ही मतलब जैसे उससे भी महादुष्ट, ऐसे महादुष्ट थे लोग दोनों, चंद्र राय और फिर दोनों को ब्रह्मदत्त लग गया। तो इतना यह रहने के बाद कितना भी वो झाड़ने फूकने वाले आते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, कोई भी जाता ही नहीं हो। इतना भी प्रयास करने के बाद कितना कुछ किया, वो भी जमींदार थे और अच्छे अच्छे लोग, उनके गांव आदि वो अपने क्षेत्र छोड़ के अलग अलग दूसरे जगह चला गया वो उत्पत्ति से। तो दोनों को ब्रह्मदत्त लग गया, बिल्कुल पतला हो गया, ऐसे बीमार हो गए, मरने वाले हैं। तो बाद में कैसे कैसे देवी जी ने, देवी जी को बहुत आराधना की, देवी ने बताया कि और जो खेतरी के नरोत्तम दी है वो आने से ठीक हो जाएगा, ब्रह्मदत्त ने स्वयं बोला था। तो बाद में समय हो गया तो नरोत्तम वो एक पत्र भेजा उनके पिताजी राघवेंद्र राय जी, पिताजी नाम चंद्र राय के पिताजी राघवेंद्र जी। तो पत्र भेजा वो उनके नरोत्तम के पिताजी के पास भेजा था पत्र। तो वो डर से, वो जानता बहुत बड़ा गुंडा है ये लोग दोनों भाई, तो वो भेजा ही नहीं, वो नरोत्तम को बोला भी नहीं है कि ये पत्र भेजा था आपको जाने के लिए, ले जाने के लिए। फिर जब उन खबर मिला कि ये आने वाले नहीं है, उनके पिताजी उनको भेजेंगे नहीं, तो दोबारा बहुत विनीत होकर पत्र भेजा और नरोत्तम दास ठाकुर को जाके पत्र दिए। उन्होंने भी विचार किए, पता लगाया कि हाँ बहुत बड़ा बदमाश है ये लोग, तो कैसे क्या करे। तो बोला महापुरुष के प्रचार है, उन्होंने गए, जाने के लिए तैयारी किया बहुत। और बहुत नाव, जब खबर मिले तो बहुत नाव, बहुत अच्छा अच्छे नए नौका दे दिया बना के, और अच्छा से स्वागत करने के लिए ले जाने के लिए तैयार हो गया। और जब सुने कि आने वाले हैं तो गांव भी बहुत सुंदर से सजा दिया, केले के ये से, फूल से, आम के पत्ते से पूरा गांव को सजाए। तो सजाने के बाद वो ले गए, गए नरोत्तम दास से। तो जाने के बाद उनका बहुत अच्छा से स्वागत किया, जहां पे वो ब्रह्मदत्त से गिरा हुआ था, मरने वाले थे दोनों भाई लगभग। तो उनके जाने के बाद ही उनको जब चरणामृत आदि पिलाए तो तुरंत साथ साथ ब्रह्मदत्त तो चले गए, वो शरीर पूरा ठीक हो गया। मरने वाले थे, ठीक हो गया। तो वो लोग बहुत परिवर्तन हो गया, एकदम रात और दिन जैसे, जैसे रात था दिन हो गया। उनकी मन की भाव ऐसे परिवर्तन हो गया, ऐसे परिवर्तन हो गया, महान के पिताजी भी सब कुछ भक्त हो गया एकदम अच्छा से। तो नरोत्तम दास ठाकुर नामाश्रय दिए, बाद में दीक्षा दिए, तो भक्त हो गए, बहुत अच्छा भक्त हो गया, लाखों एक लाख माला जप करते थे। तो एक बार गंगा स्नान के बहाना से आए थे, तो इसी समय वो चंद्रराय जी ने इसी समय उनको पकड़ लिया सरकार। मुस्लिम सरकार को पैसा नहीं देते थे, कर को जमींदार को टैक्स देना पड़ता था कि आप इस क्षेत्रों के टैक्स आप कलेक्शन करो, हमारे सालाना में इतना हमको देना है। वो देता नहीं था, पहले गुंडा था पहले। तो जब अभी साधु बन गया तो पकड़ लिया, साधु बनने से पकड़ लेते पकड़ के बंद कर दिया। तो उनका साझा हुआ, उनको एक अंदर अंडरग्राउंड में रख दिया। तो उनके पिताजी को पता चला, राघवेंद्र राय को एक तांत्रिक भेज दिया, तांत्रिक मिट्टी के अंदर से वो कमरे में प्रवेश हो गया तांत्रिक जाके। तो चंद्रराय से पता, वो बहुत प्रेम से नाम जप कर रहे थे, हरि नाम जप कर रहे थे हमेशा, दिन रात तो नाम जप करते थे, दुखी नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि आपके पिताजी मेरे को भेजा, मेरे आपके कान में एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र बोलना है, वो देवी मंत्र थे, और मेरे पीछे पीछे आना है। बोला नहीं, इस कान में मेरा गुरुजी मंत्र दिए हैं, कृष्ण नाम दिए हैं, इस मंत्र में मैं भले ही यहां पे मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, मैं दूसरा मंत्र को नहीं ले सकता हूं। तो इनकी जो नाम निष्ठा, इनकी जो गुरु निष्ठा, इसको देखकर तब उन्होंने उनसे वापस आ गए, जो तांत्रिक गए थे वापस आ गए, बताया उनके पिताजी को बताया को आएंगे नहीं चंद्रराय जी। तो वो जो भी हो इतना समर्पित हो गया, इतना बदमाश है, बदमाश लोग परिवर्तन होता है ना तुरंत बहुत अच्छा बन जाता है। तो बस वो नाम ही कर रहे हैं, उनका साझा हो गया। साझा क्या होना है, पगले वाला हाथी से उनको मारना है, ऐलान कर दिया, कोई भी आकर इनके मृत्यु का दर्शन कर सकते हैं। एक मैदान में पूरा ऐलान कर दिया, सारे लोग आ गए, चंद्रराय की मृत्यु है। तो उनको लेके आया अंडरग्राउंड से, उनको लेके आए, हाथी भी लाया, हाथी के अंदर छोड़ दिया, हाथी ने उनको पकड़ लिया, चाय नरोत्तम बोल के एक मारा घूसा उनके सूंड में, और घूसा मारते पलट खाके और चीख दे के गिर पड़ा, और वहां से चंद्रराय खड़े हो गए। तो तुरंत ये बड़ा अलौकिक कार्य है, एक कृष्णचंद्र ने इधर किया था, कुबल हाथी को मारा, ऐसे कर दिया। तो तुरंत उनकी प्रशंसा हो गया, उनको बहुत इनाम दिया, और मुस्लिम सरकार है इनाम दिया, और बहुत घोड़ा के साथ इनाम देकर उनको वापस दे दिया। तो उन्होंने भी घर नहीं गए, पिताजी को खबर भेजा कि मेरा पिताजी को बोलो खेतरी में आने के लिए, गुरुजी के सिरपाट में। उनके पिताजी भी और बहुत बहुत धन संपद लेके आए, उन्होंने जाके गुरुजी से मिला। तो ये कितना उनमें गुरु के प्रति समर्पित है, गुरु के प्रति समर्पित है, ऐसे दृश्य थे। इसी प्रकार लोगों को उन्होंने उद्धार किया, और बहुत सारे लोग हैं उनको उद्धार किया है बंगाल में, क्योंकि ब्राह्मण एक बार बोला है ब्राह्मण है, तो उन्होंने सौ गुण की एक सौ सौ ये की एक जनेऊ दिखाया था, दिव्य जनेऊ उनमें शरीर में, नरोत्तम दास ठाकुर। तो समय अतिक्रम हो गया, अभी इनसे महत्वपूर्ण जो है ना, इनकी जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मने जीवन की सार है, शास्त्र की जो निचर है, ये एक अच्छे साधक के लिए जो चाहिए ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में दिए है। आप लोग इसको पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसको, यदि कोई अपने जीवन में ये कर लेगे। इसके पहला भजन जो है श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति साधु, इसको भी मान लेगा तो उद्धार है। इसके बाद सारे कुछ बहुत सुंदर से उन्होंने बताया। वैष्णव चरण रनु भूषण करियतनु जहा हईते अनुभव है मार्जन हय वजन साधु संगे अनुक्षण अज्ञान अविद्या पड़ा जाए। तो वैष्णव की जो चरण रेणु है उनको भूषण बनाना है, तनु इस तनु में वैष्णव की जो चरण रेणु है उनको भूषण बना है। और जिससे लोगों को अनुभव होगा एक शुद्ध भक्त की जो चरण रेणु है उनको भूषण बनाना है, नहीं वो जो पाउडर है उसको नहीं लगाना है, कस्मत जो बहुत खुशबू हो रहा है वो नहीं, वैष्णव के चरण रेणु लगाना है, इसमें ये भूषण है तनु। और जिससे आपको अनुभव होगा, अरे कस्मत इसको लगाने से क्या भूला देगा इसके अपने स्वरूप को भूला देगा, स्वरूप के शरीर को ही स्वरूप बना देगा और इसको स्वरूप को एक मार्जन करना है। तो ये अनुभव जिसमें होगा भजन कैसे मार्जन होगा, हमारा जो भजन है इसमें क्या गलती है, कैसे क्या है इसको मार्जन करना चाहिए। मार्जन कैसे, साधु संग अनुखन, साधु संग करने से ही इसका भजन में हमारा मार्जन होगा। नहीं तो हम अकेला क्या कर रहे हैं, गलती करने से अपने को पकड़ में नहीं आता है गलती, दूसरा देखता है गलती, सीनियर वैष्णव है बताया प्रभु आपका ये जो कार्य है ठीक नहीं है, आप ऐसे कीजिए। तो भजन की जो मार्जन है साधु संग मनुक्षण होते हैं, अज्ञान और अविद्या का पराजय तभी होगा। जय रूप सनातन प्रेम भक्ति, जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस जुगल उज्जवल रस तनु, जहार प्रसाद लोग पाषाड़ी लो सब शोक प्रकटिल कल्पतरु जनु। तो जय रूप रूप गोस्वामी की, जय सनातन गोस्वामी की, जो प्रेम प्रेम भक्ति की रस कूप है, ये दोनों भाई जो है ये क्या है, प्रेम भक्ति की रस की जो जो प्रेम भक्ति के जो है अमृत है उसकी कुए है दोनों। भक्ति सदा सरस्वती ठाकुर भी बताते हैं कि हमारा जीवन की प्रयास क्या है, हमारा जीवन की लक्ष्य क्या है, रूप गोस्वामी की चरण की धूल बनना है, ज्यादा ऐसा नहीं करना है। ब्रह्मा जी क्या बताया, हम यहाँ पे गुल में बन के रहे, उद्धव जी भी ऐसे ही बताया, दिन का बन के रहे, घास दिन का बन के रहे। इसलिए जो अनुभव है ये जो इतना सनातन रूप है गोपी है ये लोग कितना महान है, ये लोग ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को तो ऐसा है बहुत बड़े बनने, तो मतलब हमारा जो अनुभव है वास्तव नहीं है, इसलिए इन लोगों का अनुभव लेना है, ये प्रेम भक्ति के रस रूप है। तो जिसके प्रसाद से सारे शोक जो भी शोक जो भी है भौतिक सुख दुख है सब उन्होंने ये दोनों भाई की कृपा से लोग त्याग सकते हैं। और ये कल्पतरु प्रकट किया ये दोनों भाई, प्रेम भक्ति रीतिजत निजग्रंथ सुपेक्षत करिया से दुई महाशय। तो प्रेम भक्ति का जो रीति है, प्रेम भक्ति का जो रीति है निज ग्रंथ, ये दोनों भाई रूप और सनातन अपने ग्रंथ में व्यक्त किया है दुई महाशय। जहार श्रवण होते परानंद है चित्ते जुगल मधुर रसाश्रय, और जिसको श्रवण से परानंद, ये जरानंद नहीं परानंद, इससे भी परे जो आनंद प्रेमानंद है वो आनंद चित्त में होगा, और जुगल रस की जो आश्रय है इनके कृपा से ही जान सकते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, आज का दिन इनकी प्रार्थना और प्रेमोक्ति चंद्रिका बहुत ही महान है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कोई साधारण व्यक्ति नहीं बताया, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताए हैं कि ये वेद ग्रंथ की सार निचर करके रखा गया है। इतना बोल के हम अपने वाणी को विराम देते हैं, जो भी गलतियां हैं जो भी भाषा की कमियां हैं आप लोग क्षमा करें, और जो भी है सब कुछ ये कृष्ण के समर्पण के लिए है, कृष्ण समर्पण है। जय श्री भक्तवृंद की, जय नरोत्तम दास ठाकुर की, जय श्री प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।